नमस्कार भारत, 20 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी किसानों का कर्ज माफ, भाजपा ने कहा ये नहीं स्थायी समाधान।
कर्ज माफी एक अस्थायी समाधान है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसको यदि अमली जामा पहनाया जाए निश्चित रूप से लाभ जरूर होगा।
झारखंड के लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में 8 अभियुक्त दोषी करार।
तो इसमें टोटल 8 एक्यूज थे, सबको दोषी पाया गया है। टोटल इसमें 11 गवाह एग्जामिन हुए। मेरा तो आर्गुमेंट था कि सबको फांसी सजा होनी चाहिए।
चामराजनगर के मंदिर के प्रसाद में ट्रस्ट अध्यक्ष ने मिलाया था जहर, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
500 ml की एक बोतल वो लोग यूज लिए हैं, जो चावल जो बन जाता उसमें डालने के लिए।
होगा दुनिया जहां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। राजस्थान की नवनिर्वाचित अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इससे सरकारी खजाने पर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नई सरकारें भी किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर चुकी हैं। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन के देखे जाने की सूचना मिली है, जिसके चलते कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर आवाजाही रोक दी गई। खबरों के मुताबिक रनवे के नज़दीक 2 ड्रोन देखे गए। इनकी वजह से हवाई जहाजों को उड़ान भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया है कि सीरिया में मौजूद अमरीकी सैन्य टुकड़ियां वापस लौटने लगी हैं और 100 दिनों के भीतर सभी सैनिक वापस लौट आएंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा था कि सीरिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी हार चुके हैं। अमरीकी सैन्य टुकड़ियों की वापसी का फैसला ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। वहीं कुछ अमरीकी सांसदों का मानना है कि सेना को सीरिया से वापस बुलाने के बुरे परिणाम हो सकते हैं। रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा,
They were working on a story on the massacre of 10 Rohingya Muslims in the Rakhine State in Myanmar. And what was so extraordinary?
मेरे विचार से सीरिया से अमरीकी फौज को हटाना एक हैरान करने वाला कदम है। इस फैसले का उल्टा नतीजा आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि ISIS अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये थे रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो के शब्द। कांगो गणराज्य में रविवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को राजधानी किनशासा में हुए ऐसे ही विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। इससे पहले शहर के स्थानीय गवर्नर ने पूरे इलाके में किसी भी तरह की चुनावी रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हजारों की संख्या में लोग विपक्षी उम्मीदवार मार्टिन फ्यूलो के समर्थन में बाहर निकल रहे हैं। कांगो के चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में बीबीसी से कहा,
We are doing everything to stick to the date of the 23rd, but we are evaluating the situation.
हमें 23 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है, हालांकि हम हालात पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर हालात ठीक नहीं रहे तो हम चुनाव को और आगे टालने पर विचार कर सकते हैं। हम चीजों को बेहतर होने देना चाहते हैं। ये थे कांगो के चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल चौथी बार अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेडरल बैंक से ऐसा ना करने की बात करते रहे हैं, फिर भी बैंक ने ब्याज दरों को 2.5% तक बढ़ा दिया है। ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा के साथ फेडरल बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अगले साल ब्याज दरें इस गति से नहीं बढ़ेंगी। पोप ने अमेरिका के एक पादरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मॉनसिग्नर अलेक्जेंडर सलजार नामक पादरी पर बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे थे। आरोपों के मुताबिक उन्होंने 1990 के दशक के दौरान बच्चों का यौन शोषण किया था। अपने एक संक्षिप्त बयान में वेटिकन ने कहा कि जांच में सलजार पर लगे आरोप सही पाए गए हैं, हालांकि पूर्व पादरी सलजार खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा की रिहाई से जुड़ा एक फैसला पलट दिया है। बुधवार को एक जज ने यह फैसला सुनाया था कि हिंसक अपराधों के इतर जो भी अपराधी अपने सभी न्यायिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति डिसिल्वा की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया था, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश ने इस फैसले को पलट दिया है। लूला डिसिल्वा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्हें 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी नई बनी कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार का आरोप है कि पिछली भाजपा सरकार ने कर्ज माफी का दिखावा किया और किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि यह स्थायी समाधान नहीं है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
कभी कुदरत की मार पड़ी और कभी मंडी बाजार में उसे मोल नहीं मिला। राज्य में ऐसे अनेक किसान हैं जो कर्जदार हैं। किसानों का ये ऋण हाल के चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसान का ऋण माफ करने का ऐलान किया था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, पिछली बीजेपी सरकार ने कर्ज माफी में महज 2000 करोड़ रुपए ही दिए, जबकि अब कर्ज माफी पर 18000 करोड़ रुपए का भार आएगा।
तमाम जो बैंक के लोन है, उन तमाम लोन को पिछली सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी करी है कि एक तरफ काम 50,000 तक के कर्ज माफ करेंगे और सिर्फ 2000 करोड़ पैसा चुकाया है, जबकि 8,000 का भार आने वाला था हमको, तो 6,000 करोड़ से छोड़ दिया हमारे ऊपर। तब भी हमने तमाम तय किया है कि 50,000 के बजाय समस्त लोन माफ करेंगे। कोऑपरेटिव जितने भी हमारे ऋणी हैं उन सबका समस्त लोन माफ होगा। जो बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं या अन्य बैंक हैं या गवर्नमेंट बैंक हैं, उनमें जो हमारे किसान भाई तकलीफ में हैं, जो चुका नहीं पा रहे पैसे, आत्महत्याएं कर रहे राजस्थान जैसे प्रदेश में, जब आज तक कभी आत्महत्या नहीं हुई, इसलिए हमने तय किया कि उन लोगों को ऐसी नौबत नहीं आएगा आत्महत्या करनी पड़े। उन लोगों को 2 लाख तक का, जो लोग पात्र होंगे, जो डिफॉल्टर हैं, जो पैसा भर नहीं पा रहे मजबूरी के कारण से, उनके लिए 2 लाख तक का सरकार उनका कर्जा माफ करे।
इस मरुस्थली भूभाग में सूखा और प्रकृति की निष्ठुरता कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी किसान ने हालात के आगे हिम्मत नहीं हारी। पिछले कुछ सालों में राज्य में किसानों की कथित खुदकशी के मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस सरकार की इस घोषणा पर बीजेपी ने सावचेती भरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता सतीश पूनिया खुद भी एक किसान है। वे कहते हैं, कर्ज माफी कोई मुकम्मल इलाज नहीं है।
लाभ का वायदा था, इसका निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका लाभ जरूर मिला है और किसान क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, उसको एक किस्म की राहत तो जरूर निश्चित रूप से मिलेगी। किसानों के बारे में कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, उसकी प्राथमिकता उसकी लागत कम होना, फसल की उसकी कीमत पूरी मिलना और उसकी जोखिम तय करना, ये 3 चीजें होंगी तो स्थायी समाधान होगा। कर्ज माफी एक अस्थायी समाधान है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसको यदि अमली जामा पहनाया जाए तो निश्चित रूप से लाभ जरूर होगा और वो सिरे चढ़ जाए और भविष्य में किसानों की कर्ज माफी के अलावा इसके दूसरे विकल्प भी ठीक तरीके से ढूंढे जाए।
कहीं गंदम के खेत और कहीं सरसों से सरसब्ज धरती, लेकिन किसान जब भी अपनी उपज के साथ मंडी गया उदास लौटा। शायद अब सूद ब्याज और कर्ज से उसे राहत मिले।
मेरे देश की धरती सोना उबले, उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
वहीं झारखंड के लातेहार जिले में 2 साल पहले 2 पशु व्यापारियों को पीट पीट कर मार देने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब अदालत ने 8 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इनमें से अधिकतर लोग गौ क्रांति दल से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने मजलूम अंसारी और उनके 12 साल के एक संबंधी की हत्या कर उनके शवों को पेड़ से लटका दिया था। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
साल 2016 के मार्च महीने में झारखंड से वायरल हुई एक तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रही थी। तब लातेहार जिले के झाबड़ गांव में एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकती 2 लाशों को देखकर लोग सन रह गए थे। इनकी पहचान मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान के तौर पर हुई, जो पड़ोसी गांवों के रहने वाले थे। 32 वर्षीय मजलूम अंसारी जानवरों की खरीद बिक्री का काम करते थे। 12 साल के इम्तियाज को उन्होंने अपनी मदद के लिए साथ रख लिया था। 17 मार्च की रात वे दोनों एक पशु मेले में जाने के लिए घर से निकले। अगली सुबह उनकी लाशें पेड़ से लटकते मिली। पुलिस ने इस मामले में झाबर गांव से गिरफ्तारियां की, तब पता चला कि गौ क्रांति दल नामक संगठन से जुड़े लोगों ने इनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी है क्योंकि वे पशुओं का व्यापार करते थे। अब लातेहार जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के 8 अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट में इसकी पैरवी कर रहे अधिवक्ता अब्दुल सलाम ने बीबीसी को यह जानकारी दी।
आज तो इसमें टोटल 8 एक्यूज थे, है ना, 8 एक्यूज का अभी सबको दोषी पाया गया है। टोटल इसमें 11 गवाह एग्जामिन हुए। फर्दर दो सेक्शन में पॉसिबिलिटीज है, 302 और 201 में। मेरा तो आर्गुमेंट था कि सबको फांसी की सजा होनी चाहिए।
मजलूम अंसारी की विधवा सायरा बीबी इस फैसले से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके शौहर के हत्यारों को अदालत फांसी की सजा देगी। इन दिनों वे अपने मायके में रहती हैं। कहती हैं कि आगे पहाड़ से जिंदगी काटनी है, लेकिन इसका सुकून है कि आज उन्हें इंसाफ मिला है। उन्हें बताया कि अभियुक्तों ने अपनी जमानत के दौरान कोर्ट में गवाही नहीं दिलवाने की धमकी भी दी थी।
हम तो सजा यह चाहेंगे भैया कि जैसे मेरा फांसी की सजा आज मेरा सोहर के जैसे मार के फांसी में सजा हमारा चाहिए। फांसी बदला फांसी सजा चाहता था। अभी तक धमकी फिर धमकी देता था, क्या बोलता था गवाह देगा तो उन लोग के फिर लोग धमकी आता था कि ऐसे धमकी आएंगे तो इन लोग गवाह नहीं देगा।
इम्तियाज खान की माँ नजमा बीबी इस खबर को सुनते ही रोने लगी। उन्होंने बताया कि इम्तियाज छोटी उम्र के बावजूद काफी समझदार था और उसकी कमाई से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। उसकी मौत के बाद परिवार तबाह हो गया है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन अफसोस कि उसके रास जुम्मे के दिन मिली। नजमा बीबी ने बीबीसी से कहा,
सर ये सजा हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे उसको कबला कबला मारा है हाथ पैर तोड़ के और पूरा बदन में लाठी घुमाए रहा है, वही सजा हम लोग सोच रहे हैं कि सजा होना चाहिए। फांसी वाला सजा और मारपीट होना चाहिए। हम लोग बहुत अभी तकलीफ में हैं। अब दो तो लड़की भी हो गया है सियानी शादी करने के लिए, अब सोच रहे हैं कैसे हम लोग क्या करें।
दरअसल गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की अपने समय की यह पहली घटना थी। इसके बाद झारखंड समेत भारत के दूसरे कई हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहीं और सर्वोच्च अदालत तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। बहरहाल इस मामले के अभियुक्तों को अदालत क्या सजा देती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक मंदिर में प्रसाद खाने के बाद 15 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। प्रसाद खाने के बाद मैसूर के विभिन्न अस्पतालों में 90 से अधिक मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 20 की गंभीर हालत है। पुलिस का कहना है कि कथित तौर पर शुक्रवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष ने प्रसाद में आधा लीटर कीटनाशक मिला दिया था। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि किसी को भी हैरान कर देगी। कथित तौर पर एक 52 साल के सल्लूर मठ के कनिष्ठ स्वामी पट्टदा हिमादी महादेव स्वामी और अंबिका के पति मादेश और उनका दोस्त दोड्डया ने एक साजिश रची। पुलिस के अनुसार उनका मकसद था कि वो श्री कुचुगोडी मारामा मंदिर के प्रसाद में अगर जहर डाल देते हैं तो मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों को पुलिस पकड़ लेगी और मादेश को स्वामी जी ट्रस्ट का अधिकारी बना देंगे। दरअसल पुलिस का कहना है कि यह साजिश इसलिए रची क्योंकि 2017 तक मंदिर पर पूरा नियंत्रण स्वामी जी का था, जो अब नहीं रहा था। चामराजनगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धर्मेंद्र कुमार मीना ने बीबीसी को बताया,
रजिस्ट्रेशन होने से पहले पूरा जो टेम्पल का जो लेन देन था, पैसे का जो भी मामला था, वो स्वामी जी के पर्सनल अकाउंट पे मैनेज होता था। स्वामी जी पावरफुल थे, फाइनेंशियल मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो भी है। उसके बाद ट्रस्ट बनने के बाद वो फाइनेंशियल मैटर्स को एक तीन लोग साइन करेंगे चेक पे तो ही पैसा निकाला जाएगा, ऐसा उसमें प्रोविजन डाल दिया गया और स्वामी जी की पावर भी कटेल हो गई। तो स्वामी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था।
इस मंदिर में ट्रस्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ न सिर्फ कर्नाटका से बल्कि तमिलनाडु राज्य से भी बड़ी संख्या में हर रोज भक्त आने लगे थे और काफी चाड़वा चढ़ाते थे। आसपास के गांव के लोगों के दबाव से ट्रस्ट बना था और थोड़े ही महीनों में स्वामी जी का प्रभाव कम होने लगा था, जिससे उन्हें जलन होने लगी थी। विवाद तब बढ़ा जब ट्रस्ट के सदस्यों ने मंदिर के गोपुरम बनाने के लिए स्वामी जी के 1.5 करोड़ रुपयों का प्लान खारिज कर दिया और 50-55 लाख रुपयों में गोपुरम बनाने की योजना बना ली। पुलिस के अनुसार साजिश यहीं से शुरू होती है। कथित तौर पर अंबिका ने कृषि इलाके में काम करने वाले अपने एक रिश्तेदार से यह कहकर कीटनाशक मांगा था कि उसे अपने घर में पौधों पर डालना है। पुलिस सुपरिटेंडेंट धर्मेंद्र कुमार मीना कहते हैं,
15 तारीख को अंबिका से फोन करके पूछता है कि एक मैंने जो कीटनाशक दिया क्या वो यूज किया। तब अंबिका बताती है पूरी कहानी कि ये स्वामी जी के आदेश से, स्वामी जी के प्लान से, जो स्वामी जी खुश नहीं है, जो मैं ऑलरेडी आपको रीजन बता चुका हूँ, ये इन रीजन की वजह से स्वामी जी ऐसा चाहते हैं, तो उस प्लान के मुताबिक ये जो 14 तारीख का जो फंक्शन है उसमें हमने वो कीटनाशक यूज लिया है।
पुलिस के पूछताछ में कृषि इलाके के अधिकारी ने सारी कहानी बताई और महादेव स्वामी और दुडया ने भी इस बात को स्वीकार किया। चामराजनगर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट धर्मेंद्र कुमार मीना ने कहा,
500 ml की एक बोतल वो लोग यूज लिए हैं जो चावल जो बन रहा था उसमें डालने के लिए। ये स्टेटमेंट है अंबिका का, महादेशा का, अंबिका का और दुडया का।
हादसे के दूसरे दिन ही डॉक्टरों का मानना था कि जिस तरह लोग मरे हैं और बीमार हुए हैं उससे साफ जाहिर है कि जहर बड़े तादाद में मंदिर के प्रसाद में डाला गया था। अगर पुलिस की मानी जाए तो इस पूरी कहानी में पैसों का लालच भी है, शक्ति की भूख भी और आपराधिक दिमाग भी। अभी यही देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या कहेगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
BBC के वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए, पॉर्न देखने का महिलाओं के खिलाफ हिंसा से क्या है संबंध।
मैं किसी भी फीमेल से मिलता था दिमाग में मैं इमेजिन करने लगता था एक सेक्सुअल एक्ट उनको लेके।
क्या सिनेमा इंडस्ट्री पर हावी हो रही है वेब सीरीज?
हॉलीवुड की पिक्चर भी कुछ नहीं उसके सामने।
रिहान फजल सुनाएंगे बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के किस्से।
मैं उधर से अपनी जगह से उठा और जाके पीछे से उसको एकदम घट पकड़ के चिल्लाए चार्ल्स।
BBC इंडिया बोल का विशेष अंक जिसमें श्रोताओं के विचारों और अपेक्षाओं को मिलेगी जगह। BBC के खजाने से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का विशेष साक्षात्कार।
मेरे पिताजी के साथ थोड़े से वर्ष मैंने गुजारे हैं जो उन्होंने मुझे गाना सिखाया।
कौन है वो युवा राजनेता जो अगले 20 सालों में कर सकते हैं भारत का नेतृत्व? सुनिए दिन भर में ये सब 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक।
साल की ये बड़ी हलचलें जरूर सुने BBC हिंदी के दिन भर कार्यक्रमों में। और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। जर्मनी के सत्ताधारी दल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी के CDU ने एनिग्रेट कारेन बावर को अपनी पार्टी का नया नेता चुना है। इसके साथ ही पार्टी प्रमुख के तौर पर एंगेला मर्केल का 18 साल का शासन खत्म हो गया है। जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख होने के कारण एनिग्रेट कारेन बावर जर्मनी की अगली चांसलर बन सकती हैं। इस बार के दुनिया जहां में जर्मनी की राजनीति के इस बड़े बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं BBC संवाददाता संदीप सोनी।
दुनिया जहान।
Stimmen, das sind 51,75%. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
जर्मनी में सत्ताधारी क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन पार्टी ने अपना नया नेता चुन लिया है। नाम है एनिग्रेट क्रांप कारेन बावर। 56 वर्षीय एनिग्रेट जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की वफादार रही हैं।
Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen und ich bedanke mich.
मैं इस वोट को स्वीकार करती हूँ। आपने जो भरोसा मुझ पर जताया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
Wettbewerb, den wir uns geliefert haben.
एनिग्रेट के सामने दो और उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन कड़े मुकाबले में एनिग्रेट की जीत हुई। क्या वो CDU पार्टी की पहली पसंद थी जिनमें जर्मनी को अपना भावी चांसलर नजर आया? भावी चांसलर इसलिए क्योंकि CDU जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका सरदार बनने के बाद अगली कुर्सी जर्मन चांसलर की ही होती है। जर्मनी में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार राम यादव कहते हैं,
पहली पसंद एनिग्रेट ही थी। इस मुकाबले को कड़ा ही कहना पड़ेगा क्योंकि अंतर बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से 16-17 वोट का ही अंतर है। इसके पहले वो 2011 से 2018 तक अपने छोटे से राज्य जारलैंड की मुख्यमंत्री और वहाँ CDU पार्टी की अध्यक्ष भी थी। राष्ट्रीय राजनीति में वो पहली बार इस साल फरवरी से आई जब एंगेला मर्केल ने उनको CDU पार्टी का महासचिव बनाया।
जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की छाया में राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर पार्टी प्रमुख बनी एनिग्रेट के लिए जर्मनी के ही एक नेता ने ट्वीट किया कि उन्हें अपने पैर की साइज की तुलना में बड़ा जूता मिला है। एनिग्रेट से हारने वाले और एंगेला मर्केल के विरोधी फ्रीडरिश ने अपनी हार के बाद कहा कि ये चुनाव बताता है कि CDU पार्टी में सही मायने में लोकतंत्र है। क्या वाकई ऐसी बात है या एंगेला मर्केल की पसंद सब पर भारी पड़ी?
मैं कहूंगा कि एंगेला मेर्केल की ये पसंद तो थी ही, इसीलिए एंगेला मेर्केल ने शायद बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वो पार्टी अध्यक्ष पद इस साल छोड़ देंगी। इस बीच में जर्मनी में 3-4 ऐसे चुनाव हुए विधानसभाओं के, जिसमें सीडीयू पार्टी उसके वोट बुरी तरह से गिरे। जिम्मेदारी चांसलर मेर्केल पर ही डाली गई कि ये मुख्य रूप से इनकी शरणार्थियों के प्रति जो नीति रही है उसके कारण पार्टी की अलोकप्रियता बढ़ी है, लोकप्रियता घटी है। इसलिए एंगेला मेर्केल को किसी एक उचित उत्तराधिकारी की मेरी समझ से तलाश थी और वो इन्हीं में उनको नजर आई। पार्टी के अंदर इसे फिर भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक इसलिए मानना होगा कि 3 लोगों ने बाकायदा चुनाव लड़ा अध्यक्ष पद का। एंगेला मेर्केल उसको उस तरह से प्रभावित नहीं कर सकती थी जिस तरह से लोग, बल्कि शायद कुछ लोग चाहते रहे होंगे।
भले ही सब कुछ एंगेला मेर्केल के इशारे पर ना हुआ हो, लेकिन आलोचक अनिग्रेट को मिनी मेर्केल कहते हैं। जर्मनी में वरिष्ठ पत्रकार राम यादव से मैंने इसकी वजह पूछी।
इसकी वजह मैं इसमें देखता हूँ कि अभी तक इनके बारे में ज्यादा कुछ जाना नहीं जाता है, तो अगर इनको पार्टी सचिव नहीं बनाया गया होता तो पहली बात इनके यहाँ तक पहुँचने या इस बार पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीतने या उसमें उम्मीदवार बनने की संभावना भी नहीं बनी होती। और एंगेला मेर्केल तो पिछले समझ लीजिए कि 4 संसदीय कालों से जर्मनी की चांसलर हैं। हेलमुट कोल के बाद सबसे लंबे समय तक वही जर्मनी की चांसलर हैं। तो निश्चित रूप से जो कोई भी उनके बाद आएगा उसके लिए यही कहा जाएगा कि वो मिनी है या वो बहुत बड़े जूते में अपना पैर डाल रहा है। उस जूते में पैर डालकर उसके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा।
कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि अनेग्रेट को आगे किया जाना ये बताता है कि जर्मनी में जनमत की हवा किस दिशा में बह रही है। एंगेला मेर्केल को उदार मध्यमार्गी नेता कहा जाता है और जर्मनी के लोग शायद आगे भी इसी तरह का नेतृत्व चाहते हैं। मध्यमार्गी छवि वाली अनेग्रेट में ऐसा क्या है कि जर्मनी में उन्हें अगले चांसलर के तौर पर देखा जाए?
मेरा समझना है कि एंगेला मेर्केल क्योंकि खुद महिला हैं, लंबे समय तक चांसलर रही हैं, उनकी एक अपनी मध्यमार्गी छवि बन गई जो जिसको बहुत सारे लोग जर्मनी में मध्यमार्गी से अधिक वामपंथी कहते हैं। मैं उसको भी बिल्कुल वैसा नहीं मानता। इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एंगेला मेर्केल की तरह मध्यमार्गी तो हैं, लेकिन दक्षिण पंथ की तरफ कुछ ज्यादा झुकी हुई हैं। पर इनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि इनको सचमुच एंगेला मेर्केल का उत्तराधिकारी बनना चाहिए या चांसलर बनना चाहिए। इसलिए जब तक एंगेला मेर्केल 3 साल तक और चांसलर हैं और ये सीडीयू पार्टी की अध्यक्ष हैं, तब तक इनको अध्यक्ष पद पर रहते हुए ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे या पार्टी को ऐसी कोई दिशा देनी पड़ेगी जिससे एंगेला मेर्केल की समस्या बहुत बढ़े भी नहीं, इनकी एक अपनी अलग छवि बन सके।
तमाम आलोचनाओं के बावजूद अनेग्रेट आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। बर्लिन में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेनी हिल का मानना है कि
She has a reputation for calm analysis, a straightforward approach to politics.
उनकी छवि इस तरह की है कि वो एक शांत व्यक्ति हैं। उनमें विश्लेषण की क्षमता है। राजनीति को लेकर भी उनका रुख एकदम साफ है। उन्होंने ये उम्मीद भी जगाई है कि निकट भविष्य में भले ही ना सही, लेकिन जब भी एंगेला मर्केल जर्मनी चांसलर का पद छोड़ेंगी उसमें किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आएगी। सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी अड़चन के हो जाएगा।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेर्केल की हर नीति पर अनेग्रेट की सहमति है, जैसे कॉरपोरेट बोर्ड्स में महिलाओं के लिए आरक्षण, समलैंगिक विवाह, प्रवासियों के लिए नीति और रूस के साथ संबंध जैसे कुछ मुद्दों पर उनका अपना नजरिया है। लेकिन फिलहाल सब कुछ पहले जैसा ही होगा क्योंकि जर्मन चांसलर अभी भी एंगेला मेर्केल हैं।
Wissen wir alle, dass die illegale Migration wegen der unterschiedlichen Entwicklungschancen auf der Welt in unseren Ländern zum Teil sehr große Ängste verursacht.
दुनिया जहां पेश कर रहे थे संदीप सोनी, आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। और अब समय है जान लेने का कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। स्टूडियो में अखबार के साथ मौजूद हैं नवीन नेगी जी। नवीन बताएं क्या है ताज़ा
जी शाहिद समाचार? आज दिल्ली से प्रकाशित अधिकतर समाचार पत्रों में कांग्रेस शासित जो नए राज्य हैं उनमें किसानों की जो कर्ज माफी की खबरें रोज आ रही हैं वो खबरें आज जो हैं ज्यादातर अखबारों ने अपने शीर्ष स्थान पर रखी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर ही शीर्षक लगाया है कि किसानों की कर्जे पर जो माफी की राजनीति है वो गर्माने लगी है और कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तरफ से जो है कर्ज माफी का रास्ता अपना रही हैं। अखबार के अनुसार कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है
और उसके बाद भाजपा के राज्य असम में फिर किया गया
जी। और बीजेपी का भी जिक्र अखबार ने किया है, उसमें बताया गया बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही ये आंकड़ा जो है कर्ज माफी का 70,000 करोड़ तक पहुंच जाता है
जी।
और इसी खबर में आगे ये भी बताया गया कि नीति आयोग ने कहा है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है कर्ज माफी, कृषि की जो समस्याओं को समाधान करने के लिए स्थायी समाधान नहीं है, एक फौरी तौर पर उठाया गया कदम हो सकता है।
नवीन नेगी, इसको लेकर विश्लेषक भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इससे एक खासा बोझ पड़ेगा और ये एक स्थायी समाधान नहीं है जिस तरीके से कहा जा रहा है।
जी बिल्कुल। और शायद इसके अलावा एक और तस्वीर आज कई अखबारों के पहले पन्ने पर है और वो है इसरो की तरफ से जो संचार उपग्रह GSAT-7A का सफल प्रक्षेपण हुआ है और ये वायुसेना के लिए काफी मददगार होगा बताया जा रहा है। इसका वजन जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ दैनिक जागरण अखबार में 2,250 किलोग्राम वजनी उपग्रह को भेजा गया है अंतरिक्ष में और इसका नाम है GSLV-F11
जी।
और इससे पहले जो है 29 नवंबर को 30 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था इसरो के जरिए और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी था।
नवीन, एक जनसत्ता पे एक मैं खबर देख रहा हूँ, उसकी हेडिंग है कि सरकार की निंदा करने पर पत्रकार को 1 साल की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। ये वही मणिपुर के पत्रकार हैं जिन्होंने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर सोशल मीडिया पर एक निंदा करते हुए अपना पोस्ट लिखा था। तो इंफाल वेस्ट जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिसंबर को ये आदेश पारित किया और उन्हें 1 साल के लिए हिरासत में रखने का फैसला सुनाया गया है।
जी,
बड़ा हैरान करने वाला है। उसके अलावा नवीन, एक बुलंदशहर वाली जो घटना हुई थी जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी, उसको लेकर भी एक खबर जो हर जगह हम लोग देख रहे हैं। नवभारत टाइम्स की हेडिंग है, राजनीतिक साजिश थी बुलंदशहर हिंसा, ये योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है। इसको लेकर बहुत आलोचनाएं भी हो रही हैं कि अब तक जो कथित गोकशी है उसको लेकर हिरासत में लोग लिए गए हैं, जबकि
जो पुलिस अधिकारी
है, कुमार है, उनको लेकर अब तक
उनकी हत्या किसने की, उसके आरोपी कौन है, इस पर जो है मामला अभी तक फंसा हुआ है
जी।
एक और खबर की तरफ रुक करें तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि राम मंदिर का जो मसला है वो 10 दिन में जो है सुलझ जाएगा, उन्होंने ये बात कही है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, अमित शाह ने ये बात इसलिए कही कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रोजाना इस मामले की सुनवाई हो तब ये मामला 10 दिन में सुलझ जाएगा, उन्होंने ये बात कही है। और ये भी कहा है कि निश्चित स्थान पर ही मंदिर बनेगा
जी। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन नेगी। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर। लियोनेल मेसी ने 5वीं बार गोल्डन शू अवार्ड हासिल किया और ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने 5वीं बार गोल्डन शू अवार्ड अपने नाम किया है। मेसी ने बार्सिलोना की ओर से 68 मैचों में सर्वाधिक 34 गोल किए और उन्होंने इस अवार्ड के लिए लिवरपूल के मोहम्मद सलाह, टॉटनम के हैरी केन को पछाड़ दिया। और क्रिकेट की ओर अगर आपका ध्यान लेकर जाएं तो भारत की पुरुष टीम को 2011 में विश्व विजेता बनाने वाले कोच गैरी कर्स्टन का नाम भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कर्स्टन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और टीम के कोच रह चुके रमेश पवार का नाम भी चुनिंदा लोगों की सूची में है। रमेश पवार का कार्यकाल T20 विश्व कप के बाद खत्म हो गया। वह विश्व कप सेमीफाइनल में मिताली राज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करने के विवाद में घिर गए थे। मिताली ने कोच पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। राजस्थान की नवनिर्वाचित अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन के देखे जाने की सूचना मिली है, जिसके चलते कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर आवाजाही रोक दी गई। अमरीकी अधिकारियों ने बताया है कि सीरिया में मौजूद अमरीकी सैन्य टुकड़ियां वापस लौटने लगी हैं और 100 दिनों के भीतर सभी सैनिक वापस आ जाएंगे। अमरीका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल 4थी बार अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेडरल बैंक से ऐसा ना करने की बात करते रहे हैं, फिर भी बैंक ने ब्याज दरों को 2.5% तक बढ़ा दिया है। पोप ने अमरीका के एक पादरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मॉनसिग्नर अलेक्जेंडर सलजार नामक पादरी पर बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।